दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पाठ में। आज का हमारा विषय है इतिहास और साहित्य इतिहास की अवधारणा। मनुष्य अपने बारे में जानना चाहता है कि वह कौन है, कहां से आया है, उसकी इस विकास यात्रा में कौन कौन से उतार चढ़ाव आए, उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों को उसने किस तरह से दूर किया। इन सब जिज्ञासाओं और सवालों के उत्तर मिलते हैं इतिहास में। कहा जाता है कि साहित्य में तिथियों के अलावा सब सच होता है और इतिहास में तिथियों के अलावा कुछ सच नहीं होता। आज के पाठ में हम जानेंगे कि इतिहास क्या है, इसके लेखन और अध्ययन की आवश्यकता क्या है, मनुष्य के जीवन में यह किस तरह उपयोगी होता है। साहित्य के इतिहास लेखन की अवधारणा और आवश्यकता पर विचार करेंगे। यह जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इतिहास या साहित्य इतिहास लिखे कैसे जाते हैं। इतिहास शब्द से अभिप्राय है, निश्चित तौर पर ऐसा ही हुआ था। अंग्रेजी में इतिहास का पर्यायवाची शब्द है हिस्ट्री। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने किया था, इसलिए उसे इतिहास का जनक भी कहते हैं। किसी देश या समाज के भूतकाल की घटनाओं का कालक्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहासकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से इतिहास को परिभाषित किया है। इतिहासकारों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर एक नज़र डालना जरूरी है। इन परिभाषाओं में इतिहास की अवधारणा के विभिन्न पहलुओं को समेटा गया है। ईएच कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य कभी न खत्म होने वाला संवाद है। हेनरी पीरन के अनुसार इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य की कहानी है। जे बी ब्यूरी के अनुसार इतिहास एक विज्ञान है, ना कम ना अधिक। आर जी कलिंगवुड के अनुसार सारा इतिहास विचार का इतिहास है। के एस लाल के अनुसार इतिहास मानव जीवन के महान कार्यों का वर्णन है। इतिहास की ये परिभाषाएं स्वतः स्पष्ट हैं, इनके विश्लेषण और विस्तार में हम नहीं जा रहे। कोई भी व्यक्ति इन परिभाषाओं पर एक मिनट कर ठहर कर सोचेगा तो इन परिभाषाओं के मंतव्य उसके सामने स्वतः ही उजागर हो जाएंगे। इतिहासकारों ने अपने सरोकारों और वर्गीय प्राथमिकताओं के अनुसार इतिहास को परिभाषित किया है, अपनी अपनी दृष्टि से भूतकाल का अध्ययन और लेखन किया है। इस प्रक्रिया में इतिहास से बहुत कुछ हमेशा छूट जाता है और इतिहास लेखन पर पक्षपात व पूर्वाग्रह ग्रसित होने के आरोप लगते हैं, जिनमें आंशिक सच्चाई जरूर होती है। शासन सत्ताएं अपने हितों के अनुकूल ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का बढ़ावा देती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जिसके पास वर्तमान में सत्ता व ताकत होती है, इतिहास उसका ही होता है, और जिसके पास इतिहास होता है, भविष्य भी उसका ही होता है। इतिहास लेखन की कुछ प्रवृत्तियों की तरफ संकेत करके इस बात को समझा जा सकता है। इतिहास अध्ययन करते समय इतिहासकार के पूर्वाग्रहों और शासकीय पक्षपात की भी पहचान की जा सकती है। राजाओं की वंशावलियां, उनके उत्थान पतन, उनके युद्धों व विलासिता के विवरणों को ही इतिहास के तौर पर प्रस्तुत किया गया। किसी समाज के विशेष समुदाय, वर्ग, जाति या नस्ल को ही इतिहास निर्माता के तौर पर प्रस्तुत किया जाता रहा है। सामान्य जन के संघर्षों और आंदोलनों को लंबे समय तक इतिहास में अनदेखा किया गया। व्यक्तियों की भूमिका को महिमा मंडित करके इतिहास नायक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता रहा है। वैज्ञानिक तकनीकी विकास और सामाजिक परिवर्तनों के बीच संबंधों की अनदेखी भी की गई है। जो समुदाय व वर्ग हाशिए पर रहे, उनको इतिहास में सम्मानजनक व उचित स्थान नहीं दिया गया। साहित्यिक लहजे में इसे इस तरह कहा जाता है कि जब तक हिरण अपना इतिहास नहीं लिखेगा, तब तक शेर को वीर, पराक्रमी और बहादुर कहा जाता रहेगा। उसकी क्रूरता, हिंसा और उत्पीड़न इन शब्दों की आड़ में छुपी रहेगी। दुनिया के सदियों से शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग अपनी दृष्टि से अपना इतिहास लिख रहे हैं। यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि जो बीत चुका है, उसके अध्ययन का क्या औचित्य है। इतिहास अध्ययन को गड़े मुर्दे उखाड़ने की संज्ञा देते हुए इसके अध्ययन को समय की बर्बादी भी कहने वालों की संख्या कम नहीं है। इसे छोड़कर भविष्य पर ध्यान देने की सलाह दी जाती रही है। क्या इतिहास से मुंह मोड़कर या उसकी अनदेखी करके या उसे त्याग कर कोई देश या समाज अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है? मनुष्य के विकास और निर्माण में इतिहास चेतना का बहुत बड़ा योगदान है। अपने इतिहास को जानने संवारने की मनुष्य की प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि वह उत्तरोत्तर प्रगति करता गया है। इस ब्रह्मांड में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने इतिहास को इस तरह संजोकर रखता है और अपनी अगली पीढ़ियों को हस्तांतरित करता है। इतिहास को किसी समाज या देश की सामूहिक स्मृति भी कहा जा सकता है। व्यक्ति के जीवन में स्मृति का जो महत्व है, किसी देश या समाज के जीवन के लिए इतिहास का वही महत्व है। स्मृति लोप होने से जिस तरह व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, सामूहिक विस्मृति में उस समाज या देश की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इतिहास के अध्ययन से ही मनुष्य को अपने जीवन की उपलब्धियों और कमजोरियों का बोध होता है। अतीत में किसी समाज या देश ने किस तरह से प्रगति की, इसकी जानकारी का माध्यम इतिहास ही है। भाषाओं, लिपियों, सभ्यताओं के निर्माण को जानने का माध्यम भी इतिहास है। इतिहास के विकास क्रम में कोई समाज या देश अपने अस्तित्व व बेहतरी के लिए प्राकृतिक व सामाजिक संकटों से निरंतर संघर्ष करता रहा है। इस संघर्ष के दौरान ही उसने उपलब्धियां हासिल की हैं। ये उपलब्धियां उसमें नवीन उत्साह का संचार करती हैं और प्रेरित करती हैं। इनका बोध इतिहास के अध्ययन से ही होता है। इतिहास मनुष्य को एक पहचान देता है। किसी समाज विशेष का निर्माण विशेष परिस्थितियों में होता है, उसी में उसका सामाजिक ढांचा, सामाजिक आर्थिक संबंध, नियम कायदे, नैतिकता आदि व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं का निर्माण होता है। विभिन्न घटनाओं पर प्रतिक्रियाओं में यह व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है। इस व्यक्तित्व की पहचान इतिहास के अध्ययन से कर सकते हैं। इतिहास से मनुष्य भविष्य के लिए सबक लेता है। कोई समाज अथवा देश अतीत में किस तरह के संकटों से गुजरा है और किस तरह से उसने उन संकटों का समाधान किया है, इसकी जानकारी इतिहास के अध्ययन से ही मिल सकती है। इतिहास के अध्ययन से मनुष्य अपनी संकीर्णताओं को तोड़ता है, मानवीय भाईचारे और सह अस्तित्व की भावना मजबूत होती है। कोई समाज या देश दूसरे समाज या देश से बहुत कुछ सीखता है। विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान एक समाज को दूसरे समाज के करीब लाता है। परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन भारत में अनेक स्थानों से अनेक संस्कृतियों के लोग आकर बसे। वे अपने साथ अपनी वनस्पति, काम करने के तौर तरीके, भाषा साहित्य लेकर आए और यहाँ के जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया। इतिहास के अध्ययन से ही हम अपने समाज की तुलना अतीत से कर सकते हैं। इस तुलना से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य बेहतरी की दिशा में है अथवा विपरीत दिशा में। किसी वस्तु या विचार ने मनुष्य की विकास यात्रा को किस ढंग से प्रभावित किया, इसे इतिहास से ही समझा जा सकता है। इतिहास अतीत की घटनाओं का ब्यौरा मात्र नहीं है, बल्कि देश या समाज की परंपराओं व प्रवृत्तियों को समझने का आलोचनात्मक प्रयास है, जिसके आधार पर ही भविष्य का महल खड़ा होता है। इसलिए भविष्य निर्माण के लिए आकांक्षी को इतिहास के प्रति संवेदनशील व चेतनशील होना अनिवार्य है। इतिहास के महत्व को जानने के बाद यह जानना जरूरी है कि आखिर इतिहास लेखन की प्रक्रिया क्या है, किसी इतिहासकार के इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य और उसके इतिहास लेखन को किस तरह से प्रभावित करता है। इतिहासकार भूतकाल की किसी घटना अथवा तथ्य का विवरण, उसका काल, उसके पात्र, उसका स्थान और घटना के कारणों का समग्रता में अध्ययन करते हैं। इतिहासकार भूतकाल की किसी घटना के बारे में कब, क्या, कौन, कहाँ और क्यों की जिज्ञासा शांत करते हैं। इतिहास की पुस्तकों में एक ही घटना के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत और निष्कर्ष देखने को मिलते हैं। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि भूतकाल के तथ्य और घटनाएं तो वही हैं, फिर भी इतिहासकारों के मत अलग अलग क्यों होते हैं? भूतकाल की घटना या तथ्य समान रहते हुए भी इतिहासकारों के निष्कर्ष में अंतर का प्रमुख कारण है इतिहास दर्शन। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहासकार अतीत की घटनाओं और तथ्यों की व्याख्या किस ढंग से करता है। इतिहास लेखन में इतिहासकार की दृष्टि निर्णायक भूमिका निभाती है। किसी इतिहासकार की दृष्टि अपने परिवेश, परंपरा, अध्ययन, वर्गीय स्थिति जैसे अनेक कारकों से निर्मित होती है। इतिहासकार के युग की प्राथमिकताएं, इतिहासकार की विचारधारा और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण निश्चित तौर पर उसके लेखन को प्रभावित करता है। इतिहास दर्शन के विद्वान बुद्ध प्रकाश ने अपनी इतिहास दर्शन पुस्तक में इस संबंध में लिखा है कि वस्तुतः मानव मस्तिष्क की चिंतन शैली समानताओं, आवर्तनों, संबंधों, नियमों और स्वरों पर आधारित है। यह घटनाओं और तथ्यों को बिना नियमित और संतुलित किए हुए ग्रहण करने में असमर्थ है। अतः इतिहास का अध्ययन करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से इतिहासकार के मन में उसके युग की प्रवृत्ति के अनुसार एक दर्शन समाविष्ट हो जाता है। यही इतिहास दर्शन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है कि घटनाएं और तथ्य इतिहास की आधार सामग्री हैं। यह भी सही बात है कि घटनाओं और तथ्यों के संकलन मात्र को इतिहास नहीं कहा जा सकता। इतिहासकार अपनी दृष्टि से अतीत की घटनाओं और तथ्यों का विश्लेषण व मूल्यांकन करता है, तभी वह इतिहास की श्रेणी में आता है। इतिहासकार अतीत की घटनाओं, तथ्यों, व्यक्तियों, प्रवृत्तियों और विचारों की व्याख्या और मूल्यांकन करता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक संबंध स्थापित करता है। इस प्रक्रिया में ही अतीत को वर्तमान के लिए प्रासंगिक और उपयोगी बनाता है। एक पीढ़ी के इतिहासकारों का अपने अतीत के प्रति अलग नजरिया है और दूसरी पीढ़ी का अलग। हर पीढ़ी अपनी प्राथमिकताओं और सरोकारों से अतीत का अध्ययन करती है और निष्कर्ष निकालती है। जीवन के प्रति दृष्टि और प्राथमिकताएं भिन्न होने के कारण अतीत की घटनाएं और तथ्य समान होते हुए भी अलग अलग मत होते हैं। इतिहास लेखन की प्रक्रिया में इतिहास के तथ्य या घटना चयन से लेकर उसकी व्याख्या, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण को इतिहास दृष्टि प्रभावित करती है। इतिहासकार की इतिहास दृष्टि और युग की प्राथमिकताएं उसके इतिहास लेखन को प्रभावित करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई इतिहासकार अतीत की घटनाओं और तथ्यों की सटीक व्याख्या कैसे कर सकता है? कोई इतिहासकार जितनी समग्रता में अपने वर्तमान का मूल्यांकन करता है, उतनी ही वह अतीत की घटनाओं व तथ्यों का समग्रता में मूल्यांकन कर पाएगा। अपने वर्तमान के प्रति दृष्टि व ऐतिहासिक शक्तियों की पहचान पर ही अतीत की व्याख्या निर्भर करती है। किसी युग का समग्रता में विश्लेषण व मूल्यांकन करके ही इतिहासकार अपने दायित्व का निर्वाह कर सकता है। इतिहास लेखन की अवधारणा और प्रक्रिया पर विचार करने के बाद हम साहित्य इतिहास लेखन की अवधारणा पर विचार करेंगे। साहित्य के इतिहासकारों ने इसे किस तरह से परिभाषित किया है, इस पर विचार करते हुए हम साहित्य इतिहास की आवश्यकता और प्रक्रिया पर विचार करेंगे। इसी पर विचार करते हुए यह भी उजागर होगा कि साहित्य का इतिहासकार किस तरह से भूतकाल के साहित्य को वर्तमान के लिए प्रासंगिक बनाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए उन्होंने साहित्य के इतिहास लिखने की प्रक्रिया और उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। साहित्य इतिहास की अवधारणा को समझने के लिए उनकी मान्यता महत्वपूर्ण है, उस पर एक दृष्टि डालना उचित रहेगा। उन्होंने लिखा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चितवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों के रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। इसमें शुक्ल जी ने तीन बातों की ओर संकेत किया है, जो साहित्य के इतिहासकार के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह से है। जनता की गतिशील चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखना और साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। जनता की चित्तवृत्ति निर्माण के ऐतिहासिक कारकों का दिग्दर्शन। किसी काल में जनता में विशिष्ट चित्तवृत्ति की पहचान और उसके उद्भव और विकास की दिशा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य इतिहास को जीवंत समाज की विकास कथा कहा है। उनके अनुसार साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं, वह काल स्रोत में बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं, वे ही मुख्य नहीं है। मुख्य है वह प्राणधारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विभिन्न युगों के साहित्य में मानवीय जिजीविषा के सूत्रों की पहचान करना साहित्य के इतिहासकार का दायित्व माना है। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने साहित्य के विशाल स्वरूप की धारणा को साहित्य के इतिहास का आधार कहा है। उनके अनुसार साहित्य का इतिहास न तो वर्तमान से पलायन का साधन है, न अतीत की आराधना का मार्ग। वह न तो अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयत्न है और न वर्तमान के कटु यथार्थ के दंश से बचने वाला कल्पना लोक। साहित्य इतिहास न तो अतीत की अंध पूजा है और न ही वर्तमान का तिरस्कार। साहित्य के इतिहास का आधार है साहित्य के विशाल स्वरूप की धारणा। साहित्य के विशाल स्वरूप को धारण करके ही साहित्य का इतिहासकार साहित्य के इतिहास के साथ न्याय कर सकता है। साहित्य इतिहास के बारे में जानने के बाद यह प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है कि साहित्य के इतिहास लेखन की क्या आवश्यकता है। साहित्य मनुष्य के अस्तित्व के संघर्ष की सृजनात्मक प्रतिक्रिया है। विभिन्न कालों में मनुष्य के समक्ष किस तरह के अस्तित्वमूलक संघर्ष थे और उनके प्रति उसने किस तरह की प्रतिक्रिया की, इसका बोध इतिहास से ही संभव है। साहित्य का इतिहासकार साहित्य की कृतियों का ही ब्यौरा नहीं देता, बल्कि उनका विश्लेषण और मूल्यांकन भी करता है, जिसके अध्ययन से साहित्य की प्रगति और विकास को पहचाना जा सकता है। साहित्य का इतिहासकार विभिन्न सामाजिक आंदोलनों और संघर्षों के साथ साहित्य के संबंधों की पड़ताल करता है। इन संघर्षों ने साहित्य को किस तरह से प्रभावित किया और साहित्य ने सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका निभाई, इसका बोध हमें साहित्य के इतिहास से होगा। साहित्य का इतिहासकार अतीत के साहित्य का मूल्यांकन करता है, लेकिन उसकी मूल्यांकन दृष्टि के परिप्रेक्ष्य की जड़ें वर्तमान में होती हैं। इस प्रक्रिया से वह वर्तमान और अतीत के साहित्य मूल्यों में संबंध स्थापित करता है। साहित्य के इतिहास के माध्यम से ही हम अतीत की बौद्धिक विरासत से अपना संबंध स्थापित करते हैं। साहित्य का इतिहासकार साहित्यिक कृतियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में उनके सौंदर्यात्मक और कलात्मक पहलुओं को उद्घाटित करता है। साहित्य के इतिहास के माध्यम से हम कलात्मक दृष्टि अर्जित करते हैं। साहित्य का इतिहासकार इतिहास लेखन की प्रक्रिया में सामग्री का संकलन करता है, रचनाकारों और उनकी रचनाओं की पहचान करता है, रचनाओं का काल व विषयानुसार विभाजन और वर्गीकरण करता है, तत्कालीन युग के संदर्भ में उनकी व्याख्या विश्लेषण करके उसके साहित्यिक मूल्यों व इतिहास चेतना की पड़ताल करता है। इतिहास लेखकों ने इतिहास लेखन की अनेक पद्धतियां अपनाई हैं। कई बार पद्धति के कारण तो कई बार अपनी एकांगी दृष्टि के कारण साहित्य का इतिहासकार किसी युग की चेतना को समग्रता में ग्रहण नहीं कर पाता। हिंदी के मूर्धन्य आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने द्वंद्वात्मक प्रणाली के प्रयोग को उचित बताते हुए उसकी चार विशेषताएं बताई हैं। पहली, किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति या विचार को अन्य घटनाओं, तथ्यों, व्यक्तियों, विचारों या प्रवृत्तियों के अविभाज्य प्रसंग में देखना। दूसरी, वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं और विचारों को गतिशील, परिवर्तनशील और क्रमबद्ध रूप में देखना। तीसरी, विकास क्रम को ऊर्ध्वोन्मुखी और अग्रसर रूप में देखना। चौथी, वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं और विचारों में असंगति और अंतर्विरोध को पहचानना। इस दृष्टि को अपनाकर इतिहासकार अपने लेखन में संतुलन स्थापित कर सकता है। साहित्य का इतिहास लेखन किसी देश या समाज के मनोजगत के विकास में आए परिवर्तनों तथा इसके कारकों को पहचानना है। इतिहास से हासिल साहित्य चेतना और उस देश या समाज के साहित्य की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इस कारण साहित्य के इतिहास का लेखन एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य है। इस पाठ में इतना ही। आपने आज के पाठ में इतिहास और साहित्य इतिहास की अवधारणा के बारे में बहुत सी जानकारियां हासिल की हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।